हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे
कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम
कृष्णा हरे हरे
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागुण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिताशीविशाखानितं
हम लोगों ने
माधुर्य कादंबिनी आरंभ किया है। कल हमने मैंने पिछली बार आया था जो बतलाया था उसका रिपीटेशन करके अभी अनिश्चिता भक्ति तक हम लोग पहुंचे हैं। बताया जी भक्ति दो प्रकार की है, निष्ठिता और अनिश्चिता। जिसमें हमने अनिश्चिता तक अभी कुछ कुछ बतलाया, उसमें हमने बतलाया अनर्थों में नमापराध है, सेवापराध है और भी बहुत तरह के अनर्थ हमने बतलाया। इसीलिए हम चाहते हुए भी भजन ठीक से नहीं कर पाते, रुचि नहीं लगती, टेस्ट नहीं मिलता। यदि एक आदमी 3 लाख हरिनाम कर रहा हो, भागवत भी पढ़ रहा हो, हरि कथा सुन रहा हो और चित्त द्रवित नहीं हो जाता है, पुलकित नहीं हो जाता, रोमांचित नहीं हो जाता है, तो समझो जो कहीं हमारे साधन भजन में गड़बड़ी है। भगवान का नाम इतना मधुर, इतना शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, नाम कराया एक व्यक्ति और यदि शुद्ध नाम निकले चित्त को द्रवित कर देगा, आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लग जाएगी, शरीर का होश नहीं रहेगा। तो हम लोग इतना करते हैं, होता है नहीं, तो सोचना चाहिए। फल देख करके हम किसी कर्म का अनुमान कर लेते हैं, देखते हैं कि फल तो हो नहीं रहा है, इसलिए कुछ अपराध अनर्थ है। इसलिए हम लोगों को चाहिए वो उपाय करना चाहिए जिससे कि ये चीजें हट जाएं और भगवान के नाम का श्रवण का चिंतन का ये प्रभाव फल। इसलिए पहले ये हम लोगों को समझना ये जरूर है, नहीं तो हो नहीं रहा, ये तो ठीक ही देखा, लक्षण तो ये है। इसलिए पहले साधु निंदा, इसके बाद में गुरु अवज्ञा, इन दोनों के संबंध में हमने बतलाया बहुत तरह तरह के उदाहरण दे करके, इधर से उधर करके। वैष्णव की निंदा हमने की है, उनके प्रति अपराध हुआ है और अब से हम नहीं करेंगे, बस काम खत्म नहीं हुआ, उसे अपराध क्षमा कराना होगा, अब से नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेगा, जाकर के जेल वहां पर जज को कह दिया मैंने इनका मर्डर किया है किंतु अब से नहीं करूंगा, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, कानून उसको छोड़ने नहीं देगा। यदि वो छोड़ता है तो उसी के ऊपर में फिर ब्लेम आएगा। इसलिए यही नहीं है कि आज से मैं अपराध नहीं, जिसके प्रति अपराध हुआ है गुरुजी के पास वैष्णव के पास में क्षमा कराऊंगा। और हमने ये भी कहा कभी कभी दुर्भाग्यवशतः और अज्ञानवशतः वैष्णव में दोषों का आरोप हम करते हैं, दोष नहीं रहने पर भी। जिस प्रकार से हमने उदाहरण दे करके बतलाया पार्वती जी ने चित्रकेतु महाराज जी के वचनों में दोष का आरोप किया, वो तो शंकर जी की प्रशंसा कर रहे थे, इसी तरह से हम कनिष्ठ अधिकारी लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते, जान में अनजान में उनकी हम निंदा अवज्ञा इत्यादि करते हैं। इसलिए आज से मैं नहीं करूंगा ये कहने नहीं, निरंतर हरिनाम करना पड़ेगा और जिनके चरण में अपराध हो उसे क्षमा मांगो। अरे वो तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, मानते नहीं है, तो वो वैष्णव कैसे हैं, तो हमारा अपराधी नहीं, ऐसा मत सोचो। भक्ति में कुछ विचार है, मैं आगे बतलाऊंगा इस विषय में। तीसरा हमने बतलाया, लिखा है तीसरा नमा अपराध, शिव में और विष्णु में भेद मत देखो। कोई शिव उपासक होकर के कहता कि मैं तो शिव को उपासक हूं, विष्णु के मंदिर में नहीं जाएंगे, और कोई वैष्णव लोग हैं वो कहते हैं कि शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे, शिव से कोई संबंध नहीं। जो ऐसा करता है उसका हम संग नहीं करेंगे, शिव नाम हम सुनना नहीं चाहते। इस तरह से हम जानवे अनजानवे कुछ अपराध शंकर जी के प्रति कर देते हैं, इस विषय में भी सावधान रहना चाहिए। इसको वैष्णव के निकट में जो तत्वज्ञ हैं जानने से तब ये अपराध नहीं बने तो होगा ही। हम भी पहले शंकर जी की, राम के साथ में शंकर जी की आराधना करता, फिर जब आया तो कुछ धारणा बदली, तो हमने सोचा जे राम ही की उपासना करनी चाहिए, शंकर की नहीं। फिर वैष्णव के संग में आया, गुरु जी इत्यादि के संग में नहीं, शिव को यथाजत सम्मान देते हुए भगवान का भजन। तुलसीकृत रामायण में भी लिखा है, शंकर का द्रोही और मेरा भक्त ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकेगा। तो ये कैसे होगा? इसलिए कभी कभी वैष्णव शंकर जी को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं इसका विचार सुन करके समझ करके इसको ऐसा से जरा दूर रहने चाहिए। शिव तत्व और कहीं कहा गया जस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देव तय समत्वेन विच्छेद सपाषंडी। जो लोग नारायण जो सबसे आदि देव हैं, सबके मूल है, उनके बराबर ब्रह्मा और विष्णु को बराबर मानता है तो वो पाषंडी है, उसका मुख दर्शन मत करो, ये कहा गया। और फिर यहां कह रहे हैं शिव और विष्णु में कोई अंतर मत देखो, नहीं तो पाषंडी हो जाओगे, अपराध हो जाएगा। तो ये तो दो तरह की बातें हुई। क्या करना चाहिए? साधारण कनिष्ठ वैष्णव लोग या मध्यम अधिकारी के प्रथम जो मध्यम के कनिष्ठ हैं या मध्यम के मध्यम हैं, वो समझ नहीं पाते ये क्या करना चाहिए, वो निंदा करने लगते हैं, शिव के मंदिर में नहीं जाते, शिव चतुर्दशी पालन नहीं करते, हम लोग नहीं करेंगे नहीं तो पाषंडी हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया, विचार दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, हम लोगों को क्या करना चाहिए। अधिकांश भारत में जनता का या सब लोगों का साधारण में शंकर जी के प्रति भी है, राम और कृष्ण के प्रति भी होता है, ऐसे हम लोगों के रक्त में वो पहले से ही चला रहा है। यदि कई कोई कहता है जो शंकर के मंदिर में मत जाओ तो हृदय में बगावत होती है, ये उचित नहीं जान। तो जो नौसिखिए होते हैं ना, वो कहते हैं कि सीटी कुछ नहीं है, काली और दुर्गा ये सब कुछ नहीं है, बेकार, ऐसा मत कहो, ये भगवान के ही शक्ति दी हुई ये सब चीजें हैं, आधिकारिक देवता है, उनका जथा जथा सम्मान होना चाहिए। एक चीटी में भी भगवान का अधिष्ठान जा करके उसको सम्मान देना चाहिए जो भजन करना चाहता है। शंकर जी में और कृष्ण में या नारायण तत्व में भगवत तत्व में, ये दोनों की दृष्टि से एक अभिन्न तत्व है, दो तत्व नहीं है। इस चीज को जानने के लिए ऐसा समझो कि चेतन जो वस्तु है, चिद वस्तु है, वो दो प्रकार की होती है, चिन्मय वस्तु दो प्रकार की होती है ना, एक होती है स्वतंत्र चेतन और एक होता है अस्वतंत्र चेतन। हमारे अंदर में जो जीवात्मा है ये अस्वतंत्र चेतन है, अभी माया के द्वारा आच्छादित है, माया के अनुसार में हम काम करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करने पर भी नहीं कर सकते, इसलिए हम अस्वतंत्र हैं, अभी बद्ध हैं। मुक्त होने पर भी भगवान के परतंत्र रहेंगे, इसलिए किसी भी स्थिति में ये स्वतंत्र नहीं होगा। और एक स्वतंत्र चेतन है, वो कौन है? नारायण है, कृष्ण है, मूल सबके हैं, वो कृष्ण है। उन्हीं के अंश नारायण, विष्णु इत्यादि सभी ये स्वतंत्र तत्व हैं, स्वतंत्र चेतन। अब ये स्वतंत्र चेतन भी दो प्रकार के होते हैं, खूब मैन्युअली सुनेंगे तब समझ में आएगा, साधारण नहीं। आज जो कुछ थोड़ा सा आगे अग्रसर है वो समझेंगे। तो कहते हैं एक माया स्पर्श रहित और दूसरे हैं माया स्पर्श युक्त। नारायण इत्यादि हैं, माया से कोई भी संबंध नहीं है ये जगत। कृष्ण, राम, नृसिंह, कल्कि, वामन, जितने भी भगवान के स्वांश अवतार हैं उनसे माया का कोई भी स्पर्श नहीं है, ये विशुद्ध तत्व है। किंतु माया का स्पर्श जिनसे हो जाता है, जिस ईश्वर का, माया में बद्ध नहीं होते। दो प्रकार का है, एक कपड़े को से उढ़क करके अपने को ढक लेना है, एक बार कपड़े से अपने को ढक लिया। और एक होता है एक कपड़े को किसी रंग में रंग डालो, ये तो अंतर समझ में आ रहा है। कपड़े को रंग में डाल दो, रंग के साथ में वो मिल गया, किंतु गेरू रंग में हम जो रंगते हैं इसको साबुन दे करके अच्छी तरह से दे करके देने से इसको सफेद हो जाता है, किंतु मिल गया है कपड़ा, उससे अलग है। कपड़े पर रंग लगा और मालूम होता है जी वो कपड़े के रग रग में मिल गया, किंतु कपड़े के में वो रग रग में नहीं मिला है, उसको साबुन से इत्यादि से उसको दूर कर दिया जा सकता है ना? और एक होता है अपनी लीला के लिए जगत में अवतरित होकर के और मनुष्योचित जो लीला करते हैं, प्राकृत या नरवत लीला जो करते हैं, वो माया से उनका संपर्क नहीं, कभी कभी माइक भाव से अपने को ढक लेते हैं, कैसे? जोग माया के द्वारा, जिससे कि साधारण आदमी नहीं समझते, वो कृष्ण इत्यादि है। और शंकर ऐसा तत्व है कि है तो स्वतंत्र किंतु माया स्पर्श से युक्त हैं, कपड़े से जैसे रंग देते हैं ऐसे तामसिक गुण से रंगे हुए हैं, किंतु उनसे उनका संपर्क नहीं है। जहां जरूरत काम खत्म हो गया और धो दिया बस खत्म हो गया, माया से संपर्क नहीं रहा। एक हल्दी ये है लाख होता है ना, लाख को पिघला दो और उसके अंदर में रंग मिला दो और फिर वो सूख गया, अब उसको धुलो तो धुलाई करो तो लाख साबुन दो नहीं छूटेगा, कभी छूट नहीं सकता। जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता है, जीव में कभी कभी भगवान की शक्ति का प्रवेश होता है, उसको आवेश अवतार कहते हैं, जैसे व्यास, पृथु, ये सब कपिल देव जी, ये जीव तत्व में भगवान का आवेश है, वो स्वांश नहीं है, और जगत का काम करा लेते हैं। परशुराम जी जैसे भगवान के अवतारों में एक कहे जाते हैं, किंतु वो स्वांश नहीं है, विभिन्न अंश उनमें भगवान शक्ति प्रवेश करा करके जगत का काम करा लेती है। रामचंद्र जी ने उनसे वो छीन लिया ना, धनुष यज्ञ में, धनुष यज्ञ में नहीं, स्वयंवर में रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जब आए धनुष तोड़ा तब उसमें परशुराम जी आए, एक इस बार पृथ्वी का संहार किया और अत्याचार को और ये सब चीजों को, पापों को जगत से दूर करने की चेष्टा की, ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं था, दूसरों के लिए संभव नहीं, किंतु भगवान की शक्ति उनमें प्रवेश करके ये काम कराया है जीव तत्व। और जब ही रामचंद्र जी ने और उनका साक्षात्कार हुआ, लक्ष्मण जी ने क्रोध का उद्रेक उनमें कराया और जितना क्रोध होता गया उनका वो अवतार का जो भगवान का जो शक्ति थी राम में चलती गई, अंत में सब चली गई और ये केवल ऋषि हो गए। इसलिए ये कैसा, ये जीव में आया किंतु ये साक्षात कृष्ण और राम नहीं है, किंतु कल्कि जी हैं, वामन जी हैं, कच्छप अवतार हैं, नारायण इत्यादि हैं, वो सभी लोग कृष्ण हैं। शंकर जी ऐसे नहीं हैं। शंकर जी कैसे हैं? माया से स्पर्श किया हुआ, स्पर्श करके जगत का में तामसी गुण के द्वारा जगत का ध्वंस करते हैं, संहार करते हैं, सृष्टि कराते हैं, ये सब करते हैं। इसलिए किंतु जब वो कर रहे हैं, तामसी गुण को लिए हैं, तामसी गुण छोड़ देंगे, वो सदाशिव हो करके विष्णु हो। इसलिए शंकर में और राम में, शंकर जी में और उनमें अंतर नहीं, तत्वतः एक है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया जैसे दूध है, दूध में दही डाल करके या कोई खटाई डाल दो तो वो जम जाएगा, किंतु जमने पर भी वो बदल तो गया रूप, किंतु तत्व उसमें जो घी है, जो दूध में था, दही में भी वो घी है, इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए दही भी दूध ही है, किंतु दही दूध नहीं होगी। जो तामसिक रूप से जगत का संहार इत्यादि करते हैं उस रूप में भगवत तत्व से कुछ थोड़े से अलग से दिखते हैं, किंतु तत्वतः एक है, दही और दूध तत्वतः एक है। उसी प्रकार से शंकर जी हरि और हर एक तत्व है। ब्रह्मा जी का यह नहीं है, ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं और उसमें भगवान प्रवेश करके उनसे जगत की सृष्टि करा लेते हैं। ब्रह्मा जी कितने जन्मों में, 100 जन्मों में वैसा यदि कार्य करेंगे तब शिवत्व लाभ करेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ शंकर हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, तामसी गुण से राजसी गुण श्रेष्ठ होता है, विरक्त मत होएंगे, थोड़ा सा सुनेंगे, ये तत्व काम करेंगे, रुचि इसमें नहीं लगेगी, ये तत्व है ना, किंतु तो भी थोड़ा सा सुनिए, मैं रुचिकर बना करके कह रहा हूं। सत, रज और तम है, इसमें तम से श्रेष्ठ है रज, रज से श्रेष्ठ है, ये बात ठीक है ना। शिव जी तामसी गुण के अधिष्ठात्री देवता हैं और राजसी के हैं ब्रह्मा जी और विष्णु हैं सत्व के, तो सत्व दोनों से श्रेष्ठ हैं, ये बात तो ठीक है, किंतु शंकर जी तामसी गुण के अधिष्ठात्री देव हो करके भी ब्रह्मा जो राशिक हैं उनसे श्रेष्ठ कैसे हो गए, कैसे हो गए? इसको इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने बतलाया, एक लकड़ी है, एक धुआं है और एक ज्वलंत अग्नि है ना। अग्नि ज्वलंत है, यह सत्व गुण का परिचायक है, यह विष्णु तत्व है, उसमें धुआं नहीं है। और जब केवल धुआं ही निकल रहा हो, केवल धुआं निकल रहा हो, तो उसे आंखें बंद हो जाएगी, नाक भी बंद हो सकती है, शरीर और कपड़े को भी धुआं काला कर देगा और उसमें से अग्नि को देखने नहीं देगा, इतना धुआं ही धुआं। एक लकड़ी को भिजा करके और उसको जलाओ तो आग जलेगी नहीं, केवल धुआं धुआं दिखेगा। और लकड़ी जो है उसमें आग है ना, लकड़ी में आग है, धुआं भी नहीं है और जल भी नहीं रही है, किंतु आग उसमें है, ज्यादा घर्षण कर दो आग निकल जाएगी। इसी प्रकार से शंकर जी तम अर्थात तो लकड़ी स्थानीय है, वो आंख उससे दर्द नहीं होता है, आंखों में ज्वाला नहीं होता है, आग नहीं दिखती है और वो धुएं से भरा पड़ा है, इसलिए धुएं की अपेक्षा ये लकड़ी को श्रेष्ठ माना गया, इसमें जब चाहो तब उसमें से आग पैदा कर दो। इसलिए शंकर तत्व को विचार की दृष्टि से श्रेष्ठ बतलाया है। इसलिए ब्रह्मा की अपेक्षा शंकर जी श्रेष्ठ हैं और वो भगवान के साथ अभिन्न है, इसलिए उनकी निंदा नहीं करो, मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ इसलिए शंकर की नहीं करूंगा, शंकर जी को कोई सम्मान नहीं दूंगा, ये गलत है। अंततः उनको गुरु के रूप में, मैं तो प्रणाम तो करो गुरु के रूप में करो, शिक्षक के रूप में करो, क्योंकि उनकी जितनी भी भागवत की शिक्षाएं हैं सब शंकर जी के माध्यम से आई है। इसलिए वैष्णवानां यथा संभवति, इसलिए शंकर जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तब आप तो इतना बतला रहे हैं और भागवत में या कहीं लिखा गया है जस्तु नारायण आदि देवम ब्रह्म रुद्रादि देव समत्ते न बिछेव सपाषंडी भवे ध्रुवम, आप शंकर जी को उनसे अभिन्न कर रहे हैं और उसमें लिखा है यदि बराबर मानेंगे अभिन्न मानेंगे तो अपराध हो जाएगा, पाषंडी हो जाएगा। तो इसके लिए कहते हैं जरा समझो, शिव तत्व दो प्रकार के हैं, जिस कल्प में वैसे शंकर जी नहीं आते ऐसा बहुत कम चांस होता है, जिस समय में किसी कारण से वो नहीं आते तब जीव तत्व में कुछ अपनी शक्ति को प्रकाश करके विष्णु शिव तत्व का काम कराते हैं, ये जीव तत्व होते हैं। इस जीव को और ब्रह्मा जी को कृष्ण के बराबर राम नारायण के बराबर मत अभिन्न मत समझो, किंतु जो शंकर तत्व है यथार्थ जो जिसको सदाशिव कहा जाता है वो तत्वतः एक है ऐसा समझो और उनके प्रति अनादर मत करो।
ये कभी कभी होता है,
ये कभी कभी
जब शिव जी स्वयं कृष्ण विष्णु ना आके किसी जीव में अपना शक्ति प्रकट,
उस समय उस जीव को और कृष्ण को बराबर समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहे इतना तत्व हम कैसे जानेंगे साधारण आदमी, अरे भक्ति में प्रवेश करने के लिए चेष्टा होने पर हम अभी कंप्यूटर से क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या आश्चर्य बातें कर रहे हैं और इतनी थोड़ी सी बात नहीं समझ में आएगी। भजन में प्रवेश करने पर कनिष्ठ अधिकार में जब से हम छोड़ करके आगे बढ़ने लगे ये चीजें यदि हमारे समझ में आ सकती है बिना पढ़े लिखे आदमी, तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं जरूर हो जाएगा। इसलिए संतों के पास में जाने से ये सब चीजें समझ में आती है। अंततः निंदा मत करो, यदि सम्मान नहीं दे सकते तो निंदा मत करो, यदि हो गया है ऐसा तो जो कैसे हो गया, हमने तो किया नहीं इस जन्म में, दूसरे जन्म में हो गया होगा, अपराध तो जरूर है। इसलिए ऐसा करो निरंतर हरिनाम करो और फिर से ऐसा मत करो, हरिनाम सब में करना पड़ेगा, जितने प्रकार के अपराध है उनमें हरिनाम में मुख्य है, वो हरिनाम करते चलो और फिर ऐसा ना करो। एक और बात, चौथी चीज, श्रुतियों की निंदा मत करो। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा करता है जो तत्व को नहीं।
इसमें एक प्रश्न आ रहा है,
क्या हो बोलो,
ब्रह्मा को भगवान ने अपना एक शक्ति दी तो वो उसको शक्तावेश अवतार मानेंगे क्या?
नहीं, उसको गुणावतार कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणावतार,
परशुराम को एक शक्ति दी,
हाँ वो शक्तावेश है,
इन दोनों में कैसे वो समझेंगे?
इनमें दिया है
गुणों का संचार किया
तामसी गुण का और उनमें बल शक्ति दिया, उसमें शक्ति दी, जैसे नारद जी में भक्ति शक्ति दी, व्यास में भक्ति शक्ति, कपिल में ज्ञान शक्ति दी, पृथु में पालन की शक्ति दी, ऐसे ऐसे शक्ति दिया करते।
इन शक्ता विशेषताओं नारायण को भी हम एक
नहीं कहेंगे,
कई कई जगह परशुराम को
ये आवास आवेश नहीं जानने से ऐसा होता है। अब एक दूसरी चीज है, इसमें भी हमको सावधान रहना चाहिए, क्या श्रुतियों के को निंदा मत करो। श्रुति माने वेद गीता भागवत रामायण पुराण, ये सब निंदा कैसे होती है? एक जगह लिखा है कर्म करो कर्म करो और एक जगह कहेंगे कर्म से कभी भी भक्ति नहीं होगी, कर्म मत करो, चला दो
पंखा।
उसमें तमोगुण तामसिक दिया नहीं,
स्लो नहीं होगा,
अरे भाई बहुत जल्दी मत, बहुत तेज बहुत तेज मत कर भाई, ये तो हमारा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। एक सांप निकला ना, मैंने कहा इसे मारो, हाथ से मारेगी क्या करेगी, एक लठिया ले लो और लठिया से सांप को मार करके लठिया भी फेंक दो ना, एक कांटा गड़ा है पैर में, तो वो कैसे निकलेगा? एक कांटे से ही निकलेगा, सुई भी कांटा है, निकाल करके तुमको सुई की भी जरूरत नहीं, कांटे की नहीं, दोनों को फेंक दो। ऐसे शंकर जी जगत की सृष्टि करते हैं, तो असुरों का संहार, जीवों का पालन करने के लिए कुछ ऐसे उनको काम करने पड़ते हैं, इसलिए प्रभु ने उनको दिया। अच्छा, इसको इस साथ में लेकर के इस काम को कर, इस तरह से। अब स्तुतियों की निंदा, उसमें कहीं लिखा है यज्ञार्थात कर्मणो लोके मनत्र कर्म बंदन तदर्थम कौम कंते मुक्त संग समाचार। पहले तो लिखा जो सत्कर्म करो, बिना सत्कर्म किए किसी की चित्त शुद्धि नहीं होगी। माता पिता का आदर करो, गुरु का आदर करो, पशु पक्षी जितने भी हैं उनके जैसे हैं, ये सब का कुछ आदर करो। और फिर कहा भगवत भक्ति के स्टेज में जब ऊपर चला जाता है तो लिखा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐसा क्यों कहा? पाठ कहते जी करो करो, यदि तुम ये कहेगा मैं नहीं कर्म करता तो मिथ्याचारी सब उच्यते। क्या है उस लोग? नहीं नहीं, मिथ्याचारी सब उच्यते, मैं कर्म नहीं करता, ये यदि कोई कहता है मिथ्याचारी। नहीं नहीं, ये दूसरे अध्याय का है, मिथ्याचारी सब उच्यते। ये श्वास लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, इसके बिना कोई रह सकता है? खाना भी कर्म है। अर्जुन कहते हैं जिससे मैं नहीं लड़ाई करूंगा तो मैं नहीं कर्म करूंगा, यदि ऐसा कहता तो मिथ्याचारी है, कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया शास्त्र में विवाह करना चाहिए, शास्त्रों में दिया गया, भागवत में आया प्रसंग, परीक्षित जी को सुखदेव जी का है। यज्ञों में पशु की हिंसा की जाती है, कहीं कहीं मांस खाने का भी बतलाया गया, किस लिए कहा गया? एक व्यक्ति है जब किशोरावस्था में पहुंचा, मां बाप कुछ नहीं देखता, भोगी होकर के इधर उधर डोल रहा है, उसने कहा जब विवाह करके एक स्त्री के साथ में रहो तुम, इसलिए वही ब्रह्मचर्य है। किस लिए? उसकी व्यभिचारिता को रोकने के लिए विवाह की व्यवस्था की गई, इसलिए नहीं कि खुला इधर उधर में डोलते रहो, स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए दोनों के लिए। यज्ञ में कहीं सुरापान की विधि लिखी गई, किस लिए? मद को छुड़ाने के लिए, शराब को छुड़ाने के लिए। जैसे ये विवाह किस लिए व्यवस्था दी गई? व्यभिचारी होकर के मत घूमो इधर उधर, नहीं तो लोगों से झगड़ा होगा, तकरार होगा, मारपीट होगी, तुम मारे जाओगे और इस लोक में परलोक में सब जगह तुम्हारी निंदा होगी। इसलिए एक स्त्री के साथ में, एक पति के साथ में रह करके अपना जीवन का निर्वाह करके चलो, ये विधि दी गई। किस लिए? उच्छृंखल होने से बचाने के लिए। दूसरी बात, यदि मांस खाना है तो पहले लोग खाए, तामसिक लोग खाएंगे, जो अत्यंत तामसिक व्यक्ति हैं, पशु के समान हैं, आप किसको किसको रोकेंगे? आप बाघ को खाने से रोकेंगे? और ऐसे बाघ के स्वभाव के व्यक्ति हैं उनको रोकेंगे? असंभव है। इसलिए वहां पर कहा गया यदि तुमको खाना है तो अच्छा यज्ञ करो, उसमें यज्ञ में एक पशु की हिंसा करके, बकरे इत्यादि की, और सबको खिला करके जो तुम्हारे आदमी हैं, और तब खाओ। अंकुश लगाया गया, जहां तहां जैसे तैसे काट करके खा रहा है, ऐसा नहीं, यज्ञ करो यज्ञ में। ऐसे पहले की प्रथा, आजकल की कोई ऐसी नहीं, ये भी हिंसात्मक चीज है, इसका भी मना किया गया है उनको संयम करने के लिए। इस तरह से संयम करते करते चित्त शुद्धि होगी, इसके बाद में ज्ञान होगा, संतों का संग होगा, फिर भक्ति में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए श्रुतियां एक तात्पर्यमय है। गीता का पहला श्लोक अंतिम श्लोक एक तात्पर्यमय है, भागवत का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक एक तात्पर्यमय। क्या? भगवान की भक्ति करो, बस। इसके लिए कहीं कर्म की व्यवस्था दी गई, कहीं ज्ञान की व्यवस्था दी गई, कहीं तपस्या की व्यवस्था दी गई, कभी ध्यान की व्यवस्था दी गई। इसलिए इसको अलग अलग मत समझो, इसलिए श्रुतियों को मत निंदा करो। वो अधिकारियों के लिए, उन अधिकारियों को संयमित करके आगे बढ़ने के लिए वो व्यवस्थाएं दी गई हैं। नहीं तो कहीं जैसे ये इसमें लिखा है जो कर्म करो, हम इसको नहीं मानते। देवता की उपासना करता है, दुर्गा जी की उपासना करता है, ये भ्रष्ट है, इसका मुख नहीं देखेंगे। तो श्रुतियों में लिखा, भागवत में नहीं लिखा जो दुर्गा देवी की पूजा करो? जगत के लोग पूजा करेंगे कौन सी देवी? जो कृष्ण के साथ में जन्मी है, जोग माया, कहते भाई विंध्याचल वासिनी दुर्गा काली, इनका नाम होगा। जगत के लोग अपने मनोवांछा को पूर्ण करने इनके लिए पूजा करेंगे। इसमें कहीं विरुद्ध भाव नहीं है। उनको क्रमशः उन्नत करने के लिए करते 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 साधुओं का संग होगा, फिर भक्ति में बढ़ जाएगा। इसलिए श्रुतियां का जो तात्पर्य है, समस्त मंत्रों का तात्पर्य भगवान की तरफ में ले जाना है। किसी का कोई विरोधी नहीं है, जिस प्रकार से क्लास 1-2 का विरोधी नहीं है, एमए का विरोधी नहीं है, उसी प्रकार से सब एक लाइन में है। एक ही योग, पहले कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग और अंत में उसका भक्ति। ये तीन नई पथ है, एक ही पथ है। पहले योग का नाम भक्ति योग, कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग, इसका भक्ति योग। इसलिए सूक्तियों की निंदा मत। यदि ऐसा तुमने किया है, बहुत से भावावास में कहते हैं शास्त्रों का प्रतिकार है, ये दोनों में सामंजस्य नहीं है, यहाँ पर एक और दूसरी जगह में विरोध हो रहा है, नहीं तुम नहीं समझेगा अभी। इसलिए निंदा मत करो, उसको समझने की चेष्टा करो। इस तरह से जितने प्रकार के अपराध हैं और सब चीजें हैं, इसका विचार हम लोगों ने किया। जब निष्ठा होगी, जब छोड़ देंगे, पूर्ण रूप में नहीं छूटेगी, कुछ आंशिक रूप में छूटेगी, अभी कुछ कुछ रहेगा, वो भावावस्था तक जाएगा। प्रेम भावने पर आत्यंतिक ये निवृत्ति होगी अपराध और इस सब से। इसलिए निष्ठा, इसके बाद में निष्ठा का स्थान आता है। निष्ठा मैंने कब समझो जो निष्ठा हुई, कैसे समझेंगे जो हमारी निष्ठा हुई कि नहीं? इसके लिए एक मापदंड दे रहे हैं, ये दूध ठीक है कि पानी है, कि पानी मिलावट है, और कितना पानी मिलावट है। आजकल यंत्र निकले हैं ना, पहले के या अभी भी लोग उसमें हाथ डाल करके अंगुली पर देखते हैं, नख पर देखते हैं कितना अंश पानी है, कितना कहते हैं जैसे, अच्छे दूध में पानी मिलाया है या पानी में दूध मिलाया है। मथुरा में प्राय पानी में दूध मिलाते हैं। मक्खन भी निकाल लिया, दूध देखने में मिलता। अच्छा, तो कहते हैं कि निष्ठा जब होगी, उसके लक्षण क्या है? अपराध इत्यादि कुछ दूर हो जाता है। उदाहरण दिया, एक आदमी है, उसको 105 डिग्री बुखार है, अपने आप कुछ नहीं खाएगा, रुचि नहीं है, उसको डॉक्टर से दवा ले करके देंगे, पथ्य के लिए थोड़ा सा दूध इत्यादि या कुछ ऐसा चीज है उसको देंगे। रुचि नहीं है न पीने की इच्छा है, तो भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? यदि किसी को अपराध है, नाम में रुचि नहीं हो रही, तो क्यों हमें करने की क्या जरूरत है? रुचि से हो तो ठीक था, ऐसा प्रश्न हो सकता। उसके लिए कहते हैं जब बुखार अत्यंत तेज है, किसका बुखार? अपराधों का। उस समय में हरिनाम में रुचि नहीं होगी, किंतु अपने कर्मों का फल, अपराधों का फल भोगने पर, भोगते भोगते जब कुछ पारा उतर जाता है, बुखार की डिग्री कम हो जाती है, उस समय थोड़ी सी भूख लगती है, उस समय भूख लगती है और फिर थोड़े थोड़े देर के बाद में रुचि आती है, फिर कभी शरीर बहुत दुर्बल रहता है और फिर दूध की मात्रा और पौष्टिकारक वस्तुओं की यदि मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाए, धीरे धीरे पुष्टिकार हो, शरीर भी ठीक हो जाता है, बुखार भी संपन्न होता है। ठीक भक्ति की यही स्थिति है। एक आदमी महा अनाचारी है ना, अपराधी है, उसका बुखार का इतना है जैसे नाम नहीं सुनना चाहता, भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, ठाकुर जी का प्रसाद इधर से उधर करके कर दो दो उसको दवा दो, नहीं सुनता है, हरि नाम सुनाओ, जो कोई नहीं सुनना चाहता उस गली से पांच सात आदमी निकल करके मृदंग बजाते हुए हरे कृष्ण चढ़ते हुए जाओ, कहे ये बड़े बदमाश है, वो धरी से निकलते हैं, कहेंगे, किंतु धीरे धीरे ही उस पर ऐसा फल करेगा जिस दिन नहीं, अरे भाई आज तो आए नहीं क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई, इसलिए बुखार उतरते ही अब दवा काम करेगी और जो छिड़ता रहेगी वो भगवान नाम से भगवत भक्ति से वो पूरा होती चली जाएगी, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। और व्यभिचारी आदमी लंपट आदमी क्यों भगवान का नाम करे भक्ति करे, ये भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, जो जहां है स्थान है स्थिता, अपने स्थान से भगवान का ये सब करता चले। बुखार धीरे धीरे उतरेगा, कैसे उतरेगा, भोगों से। भगवान ने ऐसा बनाया है कर्म चक्र, एक दिन अनुताप आएगा, एक आदमी महा लंपट महा व्यभिचारी है, कोई बाधा नहीं पड़ी तो बढ़ता जाता है, और पांच छह आदमी ने एक बार पकड़ करके अच्छी तरह से घुसे और दे करके खूब अच्छी तरह से उनके छक्के छुड़ा करके मुख रगड़ दिया और उनका कोई अंग काट लिया, अब थोड़ा सा नशा उतरा, अब कहे अब मत करना काम पकड़ो, बड़ी भारी कोर्ट में केस कर दिया, हजार रुपए का हर्जाना देना पड़ा, इस तरह से उतरता है नशा। इसलिए माया ये बड़ी दयालु है, घानी में पीस करके हमारे कर्म फलों से हमको हमारा बुखार उतारती है, इसलिए दया समझो। तो इसलिए जब समझो कि हमारी निष्ठा किस स्थिति, निष्ठा आई कि नहीं, अभी आकी पहले की तरफ में अभी अनर्थ युक्त हमारा नाम हो रहा है, इसके लिए पांच चीजें हैं। जब हरि नाम करने में, कीर्तन में, श्रवण में और स्मरण में, ये तीन चीजें हैं, क्या क्या, पहला नहीं पहले कीर्तन, इसके बाद में श्रवण और इसके बाद में स्मरण। हरि नाम कीर्तन करने में बड़ा उत्साह लग रहा है, किंतु जब ही किसी ने हरि कथा कहना सुनना आरंभ किया ऐसे कर, इसको कहते हैं लय, और जब दीक्षा मंत्र वाला कोई नहीं है वहां पर, एक आदमी कह रहा है सुन रहा है श्रवण में और भी पांचों आदमी दस आदमी बैठे हैं, उसमें लय होने में सोने में कुछ लज्जा आएगी तो भी वो निद मानेगी, वो तो लाख मन के पत्थर बन करके आंखों पर चढ़ जाएगी और एकदम सुला देगी। तब समझो जब भी कुछ कमी है, कीर्तन में उत्साह हो रहा है, श्रवण में कुछ कुछ है कभी कभी आती है, और जब गुरु का दिया हुआ मंत्र करने बैठे अंग ओंग या क्लिंग आरंभ किया और साथ ही साथ में हमारे एक ब्रह्मचारी जी थे नवदीप में, ठाकुर जी का पूजा करने के लिए गए तो पूजा करने में सबसे पहले अंधी करना होता है, गुरु का दिया हुआ जो दस मंत्र हैं उनको करना पड़ता है ध्यान से, तो ध्यान लगाया और पक्के ध्यान में चले गए, दो घंटा तक ठाकुर जी का दरवाजा खुला नहीं, ठाकुर जी का दरवाजा किस लिए नहीं खुल रहा, क्या बात हो गई है ना। एक हमारे महाराज जी थे नरसिंह महाराज जी, कि क्या होगा भाई ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या बात हुई, उन्हें जोश करके धक्का दिया, धक्का देखा देखा जैसे वो चुपचाप। कीर्तन में थोड़ा कम होता है, उससे अधिक होगा श्रवण में, और उससे भी अधिक होगा, इसको कहते हैं लय। जब ये तीनों में नहीं हो और स्मरण करने में भी एकदम शांत चित्त से, कनिष्ठ चित्त से गुरु का मंत्र का जो दिया है ध्यान हो रहा है, बड़ा उत्साह के साथ में मनन हो रहा है, तब तो ये लय नहीं हुआ, अन्यथा तो फिर निष्ठा नहीं। अच्छा, निष्ठ ये लय नहीं है, आप लोग विचार करके देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं। मैं समझता कि अधिकांश लोगों को ऐसा होता है, अंततः स्मरण में जरूर हो जाता है, चिंतन करने में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको उसमें आनंद आता है, उनका सौभाग्य है। एक होता है विक्षेप, लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय, और ये पांच चीजें जब हट जाएं तब समझो कि अभी निष्ठा ही है। तो अभी पहला बतलाया है लय का, दूसरा विक्षेप। आप स्मरण करेंगे तो तरह तरह की जितनी दुनिया भर की चिंताएं हैं वो आएंगी ना, दुनिया भर की चिंता, मन खाली रहता है, देख करके आराम से पलंग पर सोने के लिए वो पहुंच जाते, तरह तरह की चिंताएं, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, चाहते ही ना आए, बार बार हटाते हैं किंतु आ रहे हैं। ऐसे आ रहे हैं जैसे कि कोई नदी में या समुद्र में तालाब में जब आदमी पानी भरता है ना और कलश उठा लेता है, तो वो पानी वहां का जो रिक्त हुआ वो कैसे भरता है,